मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज दिन है सोमवार और तारीख है 24 अक्टूबर 2016 और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 12 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन यंग फ्रेंड्स के नाम हैं सुधीर ब्यूडे अमरावत महाराष्ट्र से, गौरव वशिष्ठ हरियाणा से, संदीप कुमार आर्य आप भी हरियाणा से, हर्षित सिंह दिल्ली से, संजय मिर्जापुरे पुणे महाराष्ट्र से, सूर्यकांत मिश्र उरई से, सौरभ कुमार नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से, स्नेहा भारती मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, खुशबू राजपूत धार मध्य प्रदेश से, राकेश सिंह इनका लिखा हुआ है सिर्फ उत्तर प्रदेश से, सचिन प्रताप ग्वालियर मध्य प्रदेश से और अरविंद तिवारी थाने मुंबई से। तो सुधीर, गौरव, संदीप, हर्षित, संजय, सूर्यकांत, सौरभ, स्नेहा, खुशबू, राकेश, सचिन और अरविंद, आप सभी 12 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसके साथ ही मैं अपने रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी स्टूडेंट्स को भी अब ये सलाह देना चाहूंगा। मित्रों, अब जितने भी दिन एग्जाम के बाकी हैं, क्लासेस के बाकी हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। सच पूछिए तो जो 4 महीने भी अब नहीं बचे हैं, 4 महीने अगर हैं भी तो 4 महीने क्या हैं, कुछ भी नहीं है। सच पूछिए तो यहां की क्लासेस का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको जो अपनी मानसिक संरचना तैयार करनी है, मुझे लगता है कि अब उसका वक्त आ चुका है। तो मित्रों, मैं आप सबसे भी जो 6th बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज 2 काम आप करना शुरू कर दें। पहला तो यह है कि आप डेली ऑडियो गाइडेंस लेक्चर जो भी आप कहें, इसे निश्चित रूप से सुने। इसके 2 भाग हैं फ्रेंड्स। पहला भाग आप जानते हैं लाइफ मैनेजमेंट का है और जो दूसरा भाग है वो न्यूज एनालिसिस का है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है डेफिनेटली कि जिसे भी आप सुनना चाहें, लेकिन स्पेशली जो 6th बैच के स्टूडेंट हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि फिलहाल जब तक कि वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं तब तक दोनों ही पार्ट को सुने, क्योंकि जो लाइफ मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसके माध्यम से मैं सच पूछे तो आप सबके दिमाग का वो कैनवास तैयार कर सकूंगा, जहां आने के बाद फिर 15 दिनों में फिर एकेडमी उस पर खूबसूरत पेंटिंग बना सकेगी, वह पेंटिंग जो आपके फेवर में होगी, जो आपके लिए उपयोगी होगी। और सच पूछिए तो वह तस्वीर जो आप अपने दिमाग में बना हुआ देखना चाहते हैं। तो इसलिए मित्रों, मेरी विशेष रूप से आप सब से प्रार्थना है, कह लीजिए कि सलाह है कि सब आप सब डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट प्लीज इन दोनों को रिलीजियसली, जिसे आप कह लीजिए कि रोजाना सुनने की कोशिश करें। तो मित्रों, इसके बाद अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, आज के न्यूज में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे संक्षिप्त में शेयर करना चाहूंगा। पहली जो खबर थी वो उत्तर प्रदेश सरकार में जो एक पारिवारिक जो घमासान आपको न्यूज में भी आप देख रहे हैं कि सुनने को मिल रहा है, चैनल्स पर भी है, अखबारों में भी काफी हैं, उसकी बात मैं करना चाहूंगा, लेकिन मैं विस्तार से इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देखिए, ये एक घटना है, चाहे आप इसे एक स्टेट की घटना कह लें, चाहे आप इसे एक परिवार की घटना कह लें, चाहे आप इसे राजनीतिक दल की घटना कह लें, सिविल सर्विस का इससे कोई मतलब नहीं है। सिविल सर्विस का इससे जरूर मतलब है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल हमारे यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब उनका जो संगठनात्मक जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वह किस तरीके का है और किस तरीके का होना चाहिए। पॉलिटिकली वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतांत्रिक एक राज व्यवस्था में रह रहे हैं। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है क्या? लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का मतलब ही है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाने वाला शासन, यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा है, यही डेमोक्रेसी है। नो डाउट कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है और उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक मशीन है। डेमोक्रेसी को अगर आप एक मशीन कह ले तो मशीन को चलाने के लिए हैंड्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, और वो हैंड्स और वो इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। मशीन अपने आप में नो डाउट की मायने तो रखती है, लेकिन सब कुछ मशीन नहीं कर लेगी। मशीन बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मशीन इट्सेल्फ। तो मित्रों, एक ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो कंडक्ट करेंगे, कम से कम वो जो पार्टी होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, अपने आप में डेमोक्रेटिक होगा, राइट? पार्टी के डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो पार्टी का जो संगठन है, पार्टी का संगठन अपने आप में ही एक तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति को लेकर के चलेगा। उस पर किसी एक परिवार का अधिकार नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, लगातार उसके अंदर चुनाव होते रहेंगे। डेमोक्रेसी जिस तरह से डेमोक्रेसी में होते रहते हैं, उनके अध्यक्षों का चुनाव होगा, यहां तक कि जिला और बिल्कुल लोकल लेवल तक ये डेमोक्रेसी की जो रूट है, जैसे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में पंचायत तक पहुंच गए हैं कि गांव का भी चुनाव हो रहा है, तो बिल्कुल वहां तक के कार्यकर्ताओं का चुनाव होता रहेगा। जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे, वो एमएलए जो जीत कर आएंगे वो उसका चुनाव करेंगे। तो ये पार्टी के अंदर का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि भारत में इसकी बहुत ज्यादा लैकिंग है, इसकी बहुत ज्यादा कमी है। आप कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे तो शुरू से अक्सर आपको आरोप सुनने को मिलता होगा कि गांधी परिवार चला आ रहा है, किसी कोई दूसरे के जब हाथ में जाने की बात आती है तो लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को देखें तो 25-30 साल तक लगातार कलकत्ता में एक ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, इसके बाद उनका पोलित ब्यूरो होता है, पोलित ब्यूरो पर हमेशा कुछ ही लोग चुने जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की भी वही हालत है। इसके बाद आप फिर जो रीजनल पार्टीज हैं आप उनको देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की अभी आप स्थिति देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांसीराम के बाद आप देखते हैं कि मायावती जी के ऊपर ही वो पूरी तरह से पार्टी निर्भर है। अभी तृणमूल कांग्रेस में आप ममता बनर्जी जी के पार्टी को देख लीजिए, वो पार्टी भी लगता है जैसे कि पूरी तरह से ममता बनर्जी जी पर ही आधारित है, अदरवाइज वो पार्टी कमजोर हो जाएगी। फिर आप साउथ में चले जाइए तो साउथ में भी आपको बिल्कुल वही स्थिति दिखाई देगी, जैसे अभी आप एआईडीएमके की पार्टी को देख लीजिए कि जयललिता जी हॉस्पिटल में एडमिट है, नो डाउट कि मुख्यमंत्री के रूप में पूरा देश उनसे कंसर्न है, लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा तो लगता है कि जैसे जयललिता जी ही पार्टी के सर्वे सर्वा है और इसके बाद पार्टी का क्या होगा, या ये कह लीजिए कि वो अपनी पार्टी किसको सौंपे, सेकंड कमांड कौन है जो पार्टी को संभाल लेगा, इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देंगी। आपको डीएमके में करुणानिधि जी की भी यही स्थिति दिखाई देगी। आप और दूसरी जगह चले जाइए, तेलुगु देशम को देख लीजिए तो वहां भी स्थिति, तो ज्यादातर रीजनल पार्टी में आप देखिए कि लगता है जैसे कि एक व्यक्ति के हाथ में। उड़ीसा में चले जाइए तो जनता दल में बीजू पटनायक जी के जो अभी बेटे हैं उनके हाथ में पार्टी की पूरी कमान है, तो लगता है कि जैसे कि हमारी जो ज्यादातर पार्टीज हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो, अगर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगे फिर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर का जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। यहां तक कि आप पार्टी को देख लीजिए, आप पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के चारों तरफ ही परिक्रमा करने वाली पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन मित्रों, एक अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं, एक पार्टी जरूर है जो कम से कम अपने अंदरूनी तौर पर बहुत ही जबरदस्त रूप से डेमोक्रेटिक रूप को हिंदुस्तान के सामने रख रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे रिकॉर्ड को देखिए, आपकी जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं, ये कि अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं, फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम में आने पर वो किस तरीके से काम करते हैं वो एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन जो अगर डेमोक्रेटिक करेक्टर किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो चीजें हैं। तो इस रूप में मित्रों, एक जो चूंकि पॉलिटी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक हिस्सा है, एक शब्द है, इसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंतर्गत आप यूपी में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको आप ध्यान से देख सकते हैं, कर सकते हैं। आज ही अखबार में आया है कि मुलायम सिंह जी ने अपने परिवार के 60 लोगों को अलग अलग पदों पर बैठा स्थान दे रखे हैं। तो इससे फिर यह भी फर्क पड़ता है, जब आपका पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा हो जाएगा तो फिर जो एक योग्यता पर आधारित या जनप्रतिनिधियों पर आधारित जो सिद्धांत है वो फिर आप गवर्नेंस में भी लागू करने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपको तो अपने परिवार के लोगों को ही एकोमोडेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज भी आप अरब देशों में चले जाइए जहां की सुल्तान शासक हैं, राजा, वहां भी आपको दिखेगा कि उनके कैबिनेट में भी उनके परिवार के लोग हैं और सरकारी दफ्तर पदों में भी उनके परिवार के लोग हैं, सेना में भी परिवार के लोग हैं। तो इस तरह से वो चीजें दिखाई देती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो घर से ही शुरू होनी चाहिए, पार्टी के स्तर पर शुरू होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं वो गवर्नेंस के स्तर पर भी परकोलेट होती है। तो मित्रों इस रूप में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो खबर थी फ्रेंड्स, वो थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जो मध्यस्थता समाधान के बारे में उन्होंने कहा है कि जो सरकार है उसने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि आसानी से मध्यस्थता हो सके, मध्यस्थता आसानी से हो सके और जो विवाद है उनके समाधान आसानी से हो सके। ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे उन्होंने कहा कि हैसल फ्री मीडियम ऑफ आर्बिट्रेशन, कि जो आपसी विवाद होते हैं कैसे उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि विवाद की स्थिति ही कम से कम आए, और यदि विवाद की स्थिति आ जाती है तो फिर कैसे उसका निपटारा आसानी से हो सके। प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कहा है आपने सुना होगा कि लगभग 1000 ऐसे कानूनों को खत्म किया गया है जो विवादों के कारण बनते हैं। फिर उन्होंने एक दो चीजें और भी कही, जैसे उन्होंने बैंकरप्सी कोड जो लेकर के आए हैं 2016 में एक जो अधिनियम आया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर उन्होंने आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट की बात कही। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सरकार ने इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। इसी के साथ ही मित्रों दो स्टेटमेंट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे न्यूज के ही। पहला स्टेटमेंट था हमारे चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि मध्यस्थता और समाधान हमारे मूल्यों का हिस्सा है। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मतलब ये हमारे कल्चर में ही रहा है। आप देखिए कि परिवार के जो झगड़े होते हैं, बड़े बड़े पारिवारिक झगड़े होते हैं, वो कैसे सुलझाए जाते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते। ज्यादातर झगड़े जो कोर्ट में चले भी जाते हैं, नहीं तो देखिए कि परिवार के बड़े बूढ़े लोग बैठते हैं और सुलझा लेते हैं। गांव के पहले झगड़े कैसे सुलझते थे, गांव के झगड़े गांव के पंचायत में सुलझ जाते थे। तो ये तो मध्यस्थता और समस्याओं का जो समाधान होता है ये तो हमारा एक कल्चर ही रहा है, मतलब हमारे जो जीवन मूल्य है उसका हिस्सा ही रहा है। तो भारत के लिए इस तरह की व्यवस्था कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर रविशंकर प्रसाद जी ने जो बात कही मित्रों, वो भी मुझे लगता है कि अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है, या कह लीजिए कि ऐसे का टॉपिक हो सकता है। और वो है ये ऐसे का टॉपिक, तो जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब का जो कोटेशन है वो हो सकता है। और रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा वो मुझे लगता है कि ये बड़े अच्छे से एक सिविल सर्विस मेंस का अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को संस्थानिक रूप दिए जाने की आवश्यकता है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाना चाहिए। देखिए घर परिवार में जो किया जाता है वो तो एक ट्रेडिशन के तहत हो रहा है, मान लीजिए ठीक है, फिर आप उल्लंघन भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे तब डेफिनेटली फिर मध्यस्थता से मामले ज्यादा निपटेंगे। जैसे लोक अदालतों को आप देख लीजिए, जो लोक अदालतों का स्वरूप है वो मध्यस्थता पर ही है कि दो लोगों को इकट्ठा कर लिया, समझाने की कोशिश की, बीच बचाव किया गया और मामला सुलझ गया, तो कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत न पड़े। यानी कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है कह लीजिए जो कानूनों से ऊपर है और मानवीय संवेदनाओं, समझदारी इन पर आधारित है, और व्यक्ति फिर उसको आपस में फैसला करके इन झंझटों से मुक्त होना चाहता है और अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है। यह मध्यस्थता का मूल सिद्धांत है। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी जो न्यूज में इम्पॉर्टेंट खबर थी वो थी कपड़ा उद्योग को लेकर। कपड़ा उद्योग को सुना आपने कि जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल जो फॉरेन मार्केट है उसमें भारत अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मतलब कपड़ा बाजार को बढ़ाने के लिए वहां रोड शो करने जा रहे हैं, मतलब वहां हम प्रचार प्रसार का काम करेंगे। और आपको मालूम ही होगा मित्रों, अगर आपने इकोनॉमिक्स की जरा सी भी तैयारी की हो, कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग है वो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला तो कृषि है ही, जिसमें 57-58% पॉपुलेशन हमारी लगी हुई है। दूसरा जो उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग। और आपको मालूम है कि फ्रीडम मूवमेंट में तो कपड़ा उद्योग एक तरह से स्वदेशी उद्योग का हमारा केंद्र ही था। चरखा कातना और ये सारी चीजें, स्वदेशी वस्तुएं का उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब के सब कपड़ा उद्योग से ही जुड़े हुए थे। तो आपको जो कपड़ा उद्योग है उसका जो सिनेरियो और आज वो किस रूप में भारत के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। मैं थोड़ी सी आपको बस जानकारी दे दूं कि भारत कपड़ा के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें आप सोच करके देखिए कि साढ़े तीन करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ, 3.5 करोड़ लोगों को। जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट में लगभग 11% केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का योगदान है। जूट में हम वर्ल्ड में सेकेंड हैं, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में सेकेंड है, टेक्सट कॉटन प्रोड्यूसिंग में हम वर्ल्ड में सेकेंड हैं। तो नो डाउट कि भारत में कपड़ा उद्योग की बहुत ज्यादा संभावना है। और एक ऐसे समय में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, रोबोट को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि साहब ये रोजगार छीन रहा है और 70% रोजगार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसी स्थिति में तो फिर कपड़ा उद्योग भारत के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको मालूम है कि विश्व के बाजार में जो हमारे सिले हुए कपड़े हैं, जो रेडीमेड कपड़े हैं, वो तो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप है, सस्ता है, उसके कारण सिले हुए कपड़े बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो विदेशी मार्केट में तो सिले हुए कपड़ों में कोई हमारा मुकाबला कर ही नहीं पाता है। तो मित्रों, ये तीसरी इंपॉर्टेंट खबर थी जो न्यूज पर बेस्ड थी। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर, चूंकि वक्त इतना नहीं रह गया है फ्रेंड्स, इसलिए मैं न्यूज़पेपर से ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक स्पेशली आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि एक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, जिसमें कि हमारे जो लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है जस्टिस बीएस चौहान, उनका एक इंटरव्यू छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये आप जरूर पढ़िएगा। ये लॉ कमीशन पर है। और देखिए कि आपको मालूम है कि अभी जो तीन तलाक और बहुविवाह प्रथा, तीन बार तलाक कहने, ये सब जो मामले उठे हैं पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जिस पर बहस चल रही है, उसकी शुरुआत लॉ कमीशन से ही हुई है। लॉ कमीशन ने अलग अलग समुदायों से कुछ राय मांगी है ना, उनकी पर्सनल जो उनके लॉ है उस पर कुछ उनके राय मांगी है, जिसमें सभी समुदाय के लोग, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही मांगा गया है, सभी से मांगा गया है। ये बात अलग है कि मीडिया में मुस्लिम समुदाय वाली बात ज्यादा उठ रही है। तो लॉ कमीशन एक तरीके से सेंटर में आ गया है, अभी हमारे बहस के केंद्र में आ गया है। और तो लॉ कमीशन पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी वक्त नहीं है मित्रों। तो लॉ कमीशन पर मैं अभी कुछ विशेष आपसे चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, संभव हुआ तो कल हम इस पर कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, ज्यादातर जो आर्टिकल्स हैं आप देखेंगे फिर से उसी मुद्दे को लेकर के है, जो डिप्लोमेसी में जो आर्ट लिटरेचर और कल्चर पर जो को बायकॉट करने की जो बात होती है, जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के जो अभी स्थिति पैदा हुई है, और इस पर हम लोग काफी बातें भी कर चुके हैं, तो उस पर भी आज काफी प्रेस क्लिपिंग्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको करना यह है देखिए कि अगर किसी प्रेस क्लिपिंग में आपको कोई नई बात मिलती है ना, तो उसे आप नोट कर लें, इसीलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। ये मत समझिएगा कि आपके लिए अनिवार्य ही है, और वैसे भी पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो चीज नई मिल ही जाएगी, कोई ना कोई एक नया विचार आपको या तो मिल जाएगा या आपके दिमाग में वो पैदा कर देगा, ये तो होता ही है। तो इस तरह से क्लिपिंग्स मैं और आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मित्रों, इसके सिवाय भी और इसके अतिरिक्त भी कई क्लिपिंग्स हैं, प्लीज आप उन्हें देख लेंगे। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। आज काफी मेल है मित्रों, उसमें से मैं अपने फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। क्लास से गए हुए अब उनको लगभग 15 दिन होने को आ गए हैं, और इन 15 दिनों के अनुभव को उन्होंने शेयर किया है। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लेकर के आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। एक मेरे पास मेल है लव कुमार का, जो बुलंदशहर यूपी से हैं, इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है, जिसमें तीन बातें इन्होंने स्पेशली कही हैं। पहला तो यह है कि पहले वो चीजों को केवल ऊपरी सतह पर देख पाते थे, अब उसे वो डेप्थ में देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने लिखा है कि उनकी दृष्टि अब काफी संतुलित हो गई है। और तीसरा, उन्होंने लिखा है कि जो कहने और लिखने का जो ढंग होता था पहले, अब वो टू द पॉइंट हो गया है, मतलब ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया है। लो, तुम्हारे इस परिवर्तन के लिए बहुत बहुत सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक मेल है सौम्या चड्डा का जो न्यू दिल्ली से हैं। सौम्या ने लिखा है कि द क्लासेज रिलेटेड टू सी सेट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर एनीवन कैन क्लियर प्री आफ्टर योर क्लासेज विदाउट मच एफर्ट, स्पेशली ऑन मैथ्स एंड कैन कंसंट्रेट मोर ऑन मेन्स। उसमें उन्होंने लिखा है कि खासकर सी सेट से रिलेटेड जो आपके क्लासेस थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि बिना किसी बहुत मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी के आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके वो सी सेट के पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। और फिर उन्होंने कहा, सेकेंडली, क्लासेज रिलेटेड टू एथिक्स भारतीय दर्शन ऐसे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल एज नो कोचिंग गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट, दे ओनली कंसंट्रेट ऑन मेन सब्जेक्ट। उन्होंने फिर लिखा है कि स्पेशली जो आपकी जो क्लासेज एथिक्स पर हैं, भारतीय दर्शन पर हैं, ऐसे पर हैं, वो बहुत ही अधिक उपयोगी रही, क्योंकि इसके बारे में कोई दूसरे इंस्टीट्यूट ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, उनका ज्यादा जोर मेन्स पर के सब्जेक्ट पर ही होता है। फिर उन्होंने लिखा है कि आई फील वेरी लकी टू बी ए पार्ट ऑफ एएफई स्पेशली बींग योर स्टूडेंट। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आपके एएफई का पार्ट बनने का मौका मिला, और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। सौम्या, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बस आप अपने इस निरंतरता को आप सभी लगातार बनाए रखें, यही मैं चाहता हूं। इसके बाद मित्रों, मेरे पास एक लंबा मेल है सर्वेश सिंह का, जो गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने भी अपने परिवर्तन की बातें कही हैं, और उनकी भी बातें वही हैं कि उनके सोचने समझने के तरीके में काफी परिवर्तन आया है, और अब दूसरे लोग भी उस परिवर्तन की चर्चा करने लगे हैं। इसी तरह का मेल है अनिल राठौर का ग्वालियर से, जिन्होंने लिखा है कि जो स्टूडेंट मैं पहले कहता था कि तुम 15 दिन में क्या कर लोगे, वही जब अब मुझे मिलता है तो बोलता है कि तुम जब से भोपाल से आए हो तुम काफी बदल गए हो। थैंक यू अनिल इसके लिए। विवेक कुमार मिश्रा प्रतापगढ़, वो भी 5th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। विवेक, ये बहुत अच्छा जानकर लगा कि तुमने 12वीं की क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया यहां से जाने के बाद। मुझे उम्मीद है कि यहां से जो भी सीख करके आप गए हैं उसे वहां के स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, और डेफिनेटली इससे आपको, जैसा कि मेल में भी लिखा, अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अर्चना उपाध्याय इलाहाबाद से हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके सोचने में अब बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। थैंक यू अर्चना। कानाराम जोधपुर से हैं, वो 5th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, और उन्होंने अभी राजस्थान सिविल सर्विस में जो हुआ एग्जाम हुआ उसमें उन्होंने अप्लाई किया, और उनको इससे बहुत अधिक फायदा हुआ है। कानाराम, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टेट सिविल सर्विस में भी उसका उपयोग किया। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि यह टेक्निक है, उसका उपयोग आप किसी में भी कर सकते हैं। मोनिका शर्मा का मेल है सोनीपत हरियाणा से, उन्होंने भी अब लिखा है कि उनके पढ़ने के तरीके में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है, और उनके कॉलेज के जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी सहेलियां हैं, वह भी उनके परिवर्तन को मार्क करने लगी हैं और कहने लगी हैं। मोनिका, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप सभी मेल लिखने वाले साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उनमें से कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं। राकेश कुमार सिन्हा, गौरव कुमार भारद्वाज जमुई बिहार से, आदर्श कुमार, नूपुर वर्मा कानपुर से, सायन राय पश्चिम बंगाल से, गजानन भोंडे अमरावती महाराष्ट्र से, और मानवेंद्र, आप सबका भी धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।